Drive through facility, one stop shop. Up T-Street location, exit 579 from Highway 401. In Napanee, quick truck you. 519-622-0660. QuickTruckLube.com.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस, लोकेशंस, साउंड सिस्टम, इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल, आज ही कॉल कीजिए 4372188734 chandnihalls.ca।
यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
770 AM डायल प्रोग्राम साजो आवाज सुन रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब अब आपको ले चलते हैं गर्मा गर्म खबरों की तरफ। शाजिया मलिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और खबरें भी गर्म हो चुकी हैं। चलें जी शाजी जी,
हाँ
खबरों का सेगमेंट शुरू करते हैं।
जी हम खबरों का सेगमेंट शुरू करते हैं, लेकिन आप देखें कि ये AI जो है ना, ये कैसी चीज है। वैसे तो आप सारा कुछ लिखते हैं ना कि ये बता दो, फटाफट बताती है। तो कल रात में देख रही थी उसका, दिलजीत दोसांझ कहता है उसको, वो अपने ना अपने सॉन्ग का नाम लेके बोलता है ये प्ले करो, तो वो किसी गोरे का पर कहती है, कहता है स्टॉप अलेक्सा स्टॉप यू प्ले दिस सॉन्ग, वो अपना सॉन्ग कर दे, फिर अलेक्सा यू प्ले माई सॉन्ग दिलजीत दोसांझ सॉन्ग, फिर करते आखिर वो प्ले कर दी। कहती चल चुटिए सारा कुछ तेन पता है, पर फिर भी तू नहीं प्ले कर दी। तो मैंने भी ना अभी जब तुम बात कर रहे थे याद चल रहे थे, तो मुझे भी एक शरारत सूझी। मैंने लिखा जीशान का नाम, अब मैंने जीशान को ना क्योंकि पूरे के बजाय ना जीशा मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है, मैंने उसको कहा कि आर यू फेमिलियर विद जीशा, कहती है नो आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस नेम, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज दिस टर्म यूज फॉर, इज इट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, प्लीज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज जीशा, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड and how can I assist you for better understanding, please write the context।
आप अच्छा अब आप टाइप करती ना कभी भी, नेक्स्ट टाइम कभी भी करिएगा आप सिर्फ लिखिएगा उसको आमिर स्पेस अहमद।
अच्छा
आपको बता देगी।
अच्छा 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 चलो ठीक है ओके।
अभी आप खबरें सुनाएं।
अभी जो खबरें सुना लेते हैं। ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा भाषा। राजा भाषा जो है ऑल स्टेट में होते हैं और आपको बड़ी जबरदस्त कवरेज देते हैं। अगर आपके पास दो घर और एक गाड़ी है, या अगर दो गाड़ियां हैं और एक घर है, मतलब है वट एवर आपका सिनेरियो है, तो आप इनको कॉल बस कर लें। तो जब आप इनको कॉल करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि जी ये क्या आपको अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। ठीक है, इसका इनका नंबर है 6472903773। और जनाब नासिर शाह साहब, कल बहुत ही बड़ा मेगा मेला और हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो जो है वो लेकर आ रहे हैं ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड्स में, जो कि कैलेडन में है। सुबह 12 से लेकर रात 11 बजे तक आप एंजॉय का मजा ले सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वकास सैयद को कॉल कर सकते हैं 6477127000। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल, आप छोटे बड़े अपने इवेंट्स यहां पे कर सकते हैं। इनका नंबर है 6479653823। ठीक है जी, ओके जनाब, अब हम शुरू करते हैं अपनी खबरें। खबरें जो हैं वो आज जो है एक स्पेशल रिपोर्ट है जनाब हमारे अरशद नदीम पे, कहां के रहने वाले हैं, क्या है, उन्होंने ट्रेनिंग कैसे की, क्या किया, वो जो है आप तो इसलिए आपको एंड तक ये सुनना पड़ेगा। तो अभी हम दूसरी जो खबरें हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक स्टोरी आई है ग्लोब एंड मेल में, और वो ग्लोब एंड मेल की जो वो स्टोरी है वो कह रही है जी कि यंग लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि जो उससे रिलेटेड स्टोरीज में और बढ़ रही थी आज, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर यंग लोग और यंग इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, अगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो फिर कनाडा का क्या फ्यूचर है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं, तो इसमें बड़ी मुश्किल आने वाली है। कनाडा की जो लेबर मार्केट है जी, वो उसमें उन्होंने कहा जी बहुत ही ज्यादा जुलाई के महीने में यंग पीपल और रिसेंट इमिग्रेंट्स उनको ये कहते हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में है, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो जुलाई में फॉर 15-24 एज ग्रुप के जो बंदे थे उसको 14.2% को हिट कर रहा था। इमिग्रेशन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट हिट जो है 22.8% विच इज अप 8.6 परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम द ईयर बिफोर। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनके लिए 15-24 के एज के बीच में जो है 51.3% ओनली है, विच इज डाउन 6.8 परसेंटेज एज पॉइंट फ्रॉम द सेम मंथ लास्ट ईयर। लोएस्ट लेवल फॉर समर एम्प्लॉयमेंट सिंस 1997 इस वक्त कनाडा के अंदर देखा जा रहा है। अगेन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 2 ईयर्स जो है वो भी राइज की थी फ्रॉम 6.4% to 6.4% फ्रॉम 4.8%। तो चीजें जो हैं ये काफी यहां पे खराब नजर आ रही हैं। जो लोग ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, वो भी वो कहते हैं जी कि या तो वो एम्प्लॉयड थे या दोज हु वर लुकिंग फॉर वर्क 65% से वो नीचे आई हैं नीड्स जो हैं इन जुलाई में फ्रॉम 65.3% अ मंथ बिफोर। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो थी वो तो वो कहते हैं जी इंक्रीज की है 62,000, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो नीचे आ गए 64,000 से। जो हायरिंग था वो रहा हाई पब्लिक सेक्टर में, जो कि 41,000 फुल टाइम जॉब्स थे जुलाई के अंदर, और इसमें जो ज्यादातर जॉब्स लोगों को मिली थी हेल्थ केयर, सोशल असिस्टेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर इसमें थी। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स थी वो नीचे आई हैं 42,000 से। तो यानी कि बहुत ही बुरा हाल है जॉब मार्केट का इस वक्त। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक कनाडा की जो इकोनॉमी है उसने अचानक से 2,800 जॉब्स जो हैं वो जुलाई के महीने में शेड कर दी थी। इसमें जो फुल टाइम वर्क था वो काफी उसमें लोगों को मुश्किलें रहीं, जो जॉब लॉसेस जो थे वो आगे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 30 मंथ हाई रहा टू 6.4%, और जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि यहां पे जो वैसे तो नेट गेन्स हुए हैं 22,500 जॉब के, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज किया 6.5% से फ्रॉम 6.4% इन जून। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज किया है। अब मसला ये है कि लोगों को लग रहा है क्योंकि जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है तो शायद रिसेशन जो है मार्केट के अंदर आ सकता है, और वैसे तो वो कहते हैं कि इन चीजों का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये जो बैंक ऑफ कनाडा की नेक्स्ट आने वाली है जो डिटेल्स आने वाली रेट आने वाला है उसके अंदर, लेकिन डिटेल्स ये शो करती हैं कि इकोनॉमी काफी वीक है, और इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जनवरी 2022 में था 6.5%, वैसा ही मोर और लेस ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं, लोग जॉब भी ढूंढ रहे हैं और मिल भी नहीं रही हैं, और जो है मुश्किलें लोगों की काफी बढ़ गई हैं। अच्छा जनाब, ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी है, ये भी आप सोचें कि ये पूरी तरह से नहीं आया, इसके जो रेमिनेंट्स थे यानी कि जो बाकी ये बच गया था, बचा खुचा सा जो ये बच गया था ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी, ये आज जो है एंटर हुआ है कनाडा के अंदर, ग्रेट लेक्स और सदर ऑन्टेरियो और क्यूबेक और इन इलाकों के अंदर, और 100 मिलीमीटर रेन जो है ये लेकर आया है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कनाडा इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एनवायरमेंट कनाडा जो थी उसने काफी अलर्ट्स और वार्निंग्स दिए थे, जैसे कि कॉर्नवॉल के लिए, क्यूबेक सिटी के लिए और ट्रोनो के लिए, ऑटवा के लिए, कि जी भाई यहां पे फ्लैश फ्लडिंग्स जो है वो आ सकती हैं। ऑटवा जो है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा, 50 to 75 मिलीमीटर रेन जो है आई, ट्रोनो के अंदर तकरीबन 30 मिलीमीटर रेन आई हैं इस मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून में, और काफी जो है और इलाके जैसे कि न्यू ब्रंसविक वगैरह में रात को आया था काफी तूफान, और ये जो है अब सैटरडे को जाके कहीं खत्म वहां पे होएगा और 40 मिलीमीटर रेन होगी। ट्रोनो के अंदर वंस अगेन वही जो हुआ कि जी फ्लडिंग हो गई बेतहाशा, बहुत सारी स्ट्रीट्स इलाके बिल्कुल बंद हो गए, जो सेक्शंस ऑफ गार्डनर एक्सप्रेस, डॉन वैली पार्कवे जो थी उसमें काफी पानी वानी आ गया, वहां पे काफी लोगों को परेशानी हुई और बहुत सारे मोटरिस्ट जो थे वो स्ट्रैंडेड रहे, तो काफी लोगों को मुश्किलें रहीं। चूंकि मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो आज फिर से कतर, इजिप्ट और यूएस ने इसराइल और हमास दोनों को कहा है कि भई थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें और सीज फायर की तरफ जो है वो चलें। ये तीनों कंट्रीज जो हैं, कतर, इजिप्ट और यूएस, यानी कि जो कतर के अमीर हैं अल थानी और इजिप्ट के अल सीसी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडन वगैरह जो है वो बिल्कुल चाहते हैं, और उन्होंने ये इनको कहा है कि बाय 15 अगस्त इमीडिएटली आप ये जो टॉक्स आपने स्टॉल किए हैं इनको रिज्यूम करें दोहा के अंदर, और जो भी कोई गैप्स हैं टॉक्स के अंदर उनको प्लग करने की कोशिश करें, सीज फायर करें, हॉस्टेजेस का एक्सचेंज करें, प्रिजनर्स का एक्सचेंज करें और बिल्कुल ये लड़ाई झगड़ा जो है अब छोड़ दें। उन्होंने कहा जी कि ज्यादा डिटेल्स उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये अब जो है बिल्कुल इट्स अ मस्ट के आप ऐसा करें। नतन्याहू साहब का जो ऑफिस है उधर से रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने कहा जी कि हम लोग बिल्कुल बात करने को तैयार हैं और हम अपना डेलीगेशन नेक्स्ट वीक जो है दोहा में भेजने को तैयार है। अलबत्ता हमास की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसके बीच में यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने भी आज एक्स के ऊपर कहा है कि बिल्कुल हम बड़ी कोशिश करते रहेंगे कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि अब गाजा में सीज फायर की जरूरत है। यानी मुझे बड़ी हंसी आई सुनकर इनकी जो कमेंट है कि अब सीज फायर की जरूरत है, मतलब है अब जब आपने 2 लाख के करीब बंदा मरवा दिया है अलेजली, तो अब आपको जो नजर आ रहा है कि जी अब सीज फायर होना चाहिए, वैसे अदरवाइज अगर कोई 10-12 हजार बंदा जब मरा था उस वक्त आपको सीज फायर नहीं नजर आ रहा था। उन्होंने कहा जी कि नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि यहां पे पीस आ सके। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, उन्होंने भी कहा जी कि जो यूके है वो पूरी तरह से इन टॉक्स को एंडोर्स करेगा, और बड़ी उन्होंने तारीफ की कतर, इजिप्ट और यूएस की जो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं सीज फायर के लिए। तो ये जनाब एक काफी मेजर डेवलपमेंट थी, अब देखेंगे कि 14 तारीख को क्या होएगा। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक इसराइल जो है वो अब कह रहे जी हम अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं टॉक्स के लिए नेक्स्ट वीक, और जो अपना दायरा है वॉर का बढ़ाता जा रहा है। आज उसने फिर से सदर्न लेबनान के अंदर जो है डीप जाके, पहले तो बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयां होती थी, अब डीप इनसाइड जाके इन्होंने जो सिडॉन का सिटी है 60 किलोमीटर फ्रॉम फ्रंटियर उसमें जाके अटैक्स किए हैं, और उसमें इन्होंने कहा जी कि जो दो हमास के लीडर थे, एक समर अल हज और दूसरे जो थे एन अल हिलवे, इनको जो है इसमें हमने उनको जो कैंप है रेफ्यूजी कैंप उसके अंदर हमने एक और जो दूसरे इनके जो हैं साथी उनको मारा। इसके साथ साथ इनके जो बॉडीगार्ड थे वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली वुंडेड हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं और शीन बेट जो है वो इजरायल की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने ये कंफर्म की है डेथ्स। उन्होंने कहा हाँ जी ये दोनों के ये बड़े फ्रंट लाइन हमास के सीनियर लीडर थे जिनको के हमने मारा है। आपको पता ही है कि बहुत दिनों से IDF जो है वो हमास और हिजबुल्ला के मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रही है, और पिछले 10 महीनों से ही वो ये सारी कार्रवाइयां इनके खिलाफ कर रही हैं जब से गाजा की वॉर जो है वो शुरू की गई है। ये हॉस्टिलिटीज जो हैं बेतहाशा बढ़ गई हैं, और इसके रहते हुए अब ईरान ने कहा है कि इसराइल को पनिश करना बहुत जरूरी हो गया है। उनके जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खामेनेई, उन्होंने कहा जी कि इनको पनिश करना जरूरी है। तो अब कॉन्स्टेंटली क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्लाह को और उनकी जगहों पे कर रहे हैं, तो नॉट एवरीबडी कैन अब कीप क्वाइट। बहरहाल दुनिया बाकी जो वेस्ट है वो तो सो रहा है, तो ईरान जो है वो उसने कहा कि हम इनको पनिश करेंगे। आज एक बहुत ही जो अजीब वाकया हुआ, आपको पता ही है कि 9 अगस्त 1945 इन द डाइंग डेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नागासाकी जो है उसके ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब मारा था, तो उसकी आज एनिवर्सरी अगस्त 9 को मना रहे थे। मेयर ऑफ नागासाकी शिरो सुजुकी जो थे उन्होंने कहा ये जो हम मेमोरियल कर रहे हैं यहां पे होल्ड कर रहे हैं जिसमें कि 1945 में तकरीबन जो है वो 74,000 लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी जापानीज की यहां पे, उसमें हम इसराइल को नहीं बुला रहे हैं इस इवेंट में अटेंड करने के लिए। अब जी जाहिर है इसराइल तो इनका अमेरिका का माई बाप है और यूके का भी, यूके के ने तो सारे ये ड्रामे शुरू करवाए हैं इस रीजन के अंदर। तो दोनों ही कंट्रीज ने, फिर यूके और यूएस ने कहा जी कि हम अपने ऑफिशियल्स को नहीं भेजेंगे इस मेमोरियल की जो ये सर्विसेज हैं उसके लिए, और अपना कोई जूनियर स्टाफ हम भेज देंगे। और इसी तरह दूसरे कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी कहा जी कि हम जूनियर स्टाफ भेजेंगे, जिसके ऊपर जो मेयर ऑफ नागासाकी हैं उन्होंने बड़ा इसका बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी कि इसराइल को तो हमने इसलिए मना किया था क्योंकि हम ये बहुत स्मूथली सेरेमनी को आगे लेके जाना चाहते थे और हम चाहते थे ये पीसफुल रहे, सॉलम एनवायरमेंट यहां पे रहे, लेकिन आपने जो है इस सारे को स्पॉयल किया है, ये इसराइल को हमने नहीं बुलाया था तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए था। बहरहाल जी नागासाकी के अंदर जो सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब मारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया अमेरिका ने, उसमें 74,000 लोगों की डेथ हुई थी। इससे तीन दिन पहले अमेरिका ने पहली दफा न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हिरोशिमा के ऊपर मारा था जिसके के अंदर 140,000 लोगों की डेथ हुई थी। और उसके बाद जो है 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया था और इस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो एंड पे आई थी। और ये जो एशिया के अंदर जापान का बहुत ज्यादा जो इनका था इम्प्रेशन एग्रेशन का और वो सारा वो भी जो है वो खत्म हुआ, क्योंकि उसके बाद जापान ने पूरी कोशिश की कि एक बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल और नाइस एंड काइंड नेशन जो है वो बन के अब ये आइंदा चलेंगे। तो बहरहाल ये जो है जनाब आज हुआ है नागासाकी में। एक और जो मिडल ईस्ट के अंदर मुद्दा भड़क गया है, अब ये तो जनाब गैस और पेट्रोल की लड़ाई है, ऑयल एंड गैस की ये लड़ाई है एंड इट इज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक इलाका है दोरा का, ये जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग जो दो कंपनीज हैं सऊदी अरेबिया की और कुवैत की, वो जो हैं अब इसके अंदर जिसमें कि यूएई इनको बड़ा सऊदी अरेबिया को बैक करता है इसके अंदर, तो ये कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच का ये इलाका है, दोरा का इलाका है, और इनके बीच में अब ये लड़ाई है कि यहां पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलमेंट जो है वो कौन करेगा, बिकॉज दिस होल डेवलपमेंट इज वर्थ 10 बिलियन US डॉलर्स, बट इट इज वर्थ इट क्योंकि ये इलाका जो है इसमें 84,000 बैरल्स पर डे ऑफ कॉन्डेंसेट है और इसके अंदर 600 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे आप गैस निकाल सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया, इट्स इन द न्यूट्रल जोन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, लेकिन इसके अंदर अब एक तीसरा भी जो हकदार है वो शामिल हो गया है एंड दैट इज ईरान। ईरान कॉल्स दिस एरिया एज अराश, और ईरान जो है लेकिन वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है जी कि हम मिलकर इसको डेवलप कर लेंगे एंड दे आर रेडी टू, इनके साथ जो 5 to 6 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स ये बनाना चाहते हैं विद इंटरकनेक्टिंग फ्लो लाइंस, गैस गैदरिंग इक्विपमेंट, 200 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन, 100 किलोमीटर ऑफ सब सी केबल्स, एक्सटेंसिव ऑनशोर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। वो कहते हैं जी कि हम आपके साथ सब इसके अंदर करने के लिए तैयार हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन जो है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी जो है वर्ल्डी पार्सन्स उनको दिया है इन्होंने, और ईरान जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है इस इलाके के डेवलपमेंट में, रियल प्रॉब्लम जो है वो सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच में ही है, और सऊदी अरेमको और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो इसके जो डेवलपमेंट के लिए है अब रेसल कर रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाए, कौन ये करे, क्योंकि इसके अंदर तो यानी गैस फील्ड जो ये है इसके नीचे तो सोना ही सोना है, यानी कि ऑयल एंड गैस से भरा हुआ ये इलाका दौरा का। तो ये जनाब बड़ी आज अगर मिडल ईस्ट में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे काफी आपको ये ट्रेंड आज नजर आएगा, दौरा दौरा आपको काफी नजर आएगा वहां पे। एक प्लेन जो कि 62 पैसेंजर्स को लेके जा रहा था विनहेल्डो जो ब्राजील के अंदर है, साओ पालो जो उनका है कैपिटल, उससे वहां पे ये क्रैश हुआ है और उसके अंदर जो है काफी लोगों की डेथ्स हुई हैं। जो लोकल फायर फाइटर्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। ये ATR-72 एयरक्राफ्ट था जो कि ऑपरेट कर रहे थे वो पैस लिनहास एयरवेज, और ये जा रहा था कैस्केवल से इन पेरेला टू गुरहडोज इन साओ पालो, वहां पे जा रहा था जबकि ये क्रैश हुआ। तो जो ये जो इसकी वीडियो जो जिसके फुटेज लिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो ये शो कर रहे हैं कि ये जहाज जो है बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड एरिया जो था उसके अंदर गिरा है और उसके बाद फिर काफी ब्लैक स्मोक जो है वो आती रही है। अब सर्वाइवर्स हैं इसके अंदर के नहीं या सारों की डेथ हो गई है वो अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं, जब आएंगी तो फिर हम जाहिर है आपके साथ जो है वो जरूर शेयर करेंगे। अच्छा जनाब, राइट्स जो हैं बांग्लादेश में दूसरे तो रुक गए हैं जो कि शेख हसीना के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन अब नए जो वहां पे प्रोटेस्ट्स हैं वो शुरू हो गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो हैं ढाका के अंदर आज वो फिर स्ट्रीट्स के ऊपर थे क्योंकि जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं ये मोर्चा उन्होंने निकाला हुआ था, क्योंकि जब से शेख हसीना अपना प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छोड़ के और मुल्क को छोड़ के गई हैं तब से हिंदू कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक स्कूल टीचर जो हिंदू है उसकी डेथ हो गई है, 45 जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो इनके हिंदुओं के टेंपल्स और बिजनेसेस और होम्स जो हैं वो कहते हैं जी इनको टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि कल मोहम्मद यूनुस साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बांग्लादेश उन्होंने कहा था कि ये तमाम जो चीजें हैं चाहे किसी का गुरुद्वारा है चाहे टेम्पल है उस सबको आप लोग प्रोटेक्ट करें, हम सब बंगाली हैं। प्रोटेस्टर्स जो हैं जी वो पोस्टर्स लेके जा रहे थे कि भई हमको माइनॉरिटीज को सेव करो, हम सब बंगाली हैं, हम पीस में रहना चाहते हैं, और एक जो इंटरसेक्शन था ढाका के अंदर वो भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। हिंदूज जो हैं दे मेक 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 170 मिलियन, और ट्रेडिशनली ये लोग जो हैं अवामी लीग जो थी शेख हसीना वाजिद की उसको ये करते थे, सपोर्ट करते थे। बांग्ला हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल जो है उसने एस्टिमेट किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर 64 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 52 जो हैं उसके अंदर इस वक्त कॉम्युनल वायलेंस जो है वो शुरू हुई हुई है सिंस अगस्त 4, और उन्होंने अब मोहम्मद यूनुस साहब को ही कहा है कि आप फिर लोगों को बोलें कि हमारे ऊपर अटैक्स ना करें। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है उसने भी कहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि वायलेंस को नीचे लाएं क्योंकि आपके मुल्क में रेशली बेस्ड अटैक्स इंसाइटमेंट एंड वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जनाब यानी कि स्यापे जो हैं वो तो बांग्लादेश में चल ही रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। डॉक्टर फियाज कुरैशी के तीन क्लिनिक्स हैं जी, एक दो मिसिसागा में हैं और एक क्लिनिक उनका स्कार्बरो में है। मिसिसागा में अगर आपको जाना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9052325678, और स्कार्बरो में है 4167579999। हर तरह की आपको डेंटिस्ट्री देते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। और जनाब विलेज टेस्ट ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, तो ये इनका एक रेस्टोरेंट जो है मिसिसागा में है उसका नंबर है 9052233663, और एक ओकविल में है उसका नंबर है 9052262294। अगर आप जाना चाहते हैं आज वीकेंड है वैसे भी एंजॉय का मजा लेना चाहते हैं तो आप जरूर इनके किसी एक रेस्टोरेंट पे जाएं। और जी पायल ज्वेलर्स, हर तरह की जबरदस्त किस्म की इनके पास ज्वेलरी होती है 22 कैरेट गोल्ड, और दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त डिजाइन हैं। आपको अगर अपने किसी घर के इवेंट के लिए या शादी ब्याह या निकाह के अकीका के लिए कोई गोल्ड की चीज चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है 9057907879। ठीक है जी, तो आप इनको कॉल कर लें। ओके जी, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं आज वो दो दिन के दौरे के लिए कराची में पहुंचे हैं, और कराची में उनकी मुलाकात जो है वो मुराद अली शाह के साथ चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई है। चीफ मिनिस्टर हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि जो मीटिंग थी इसने फोकस किया डिफरेंट फेडरल एंड सिंध रिलेटेड इश्यूज में, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस उसके ऊपर बात की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि हम पब्लिक को जो है वो रिलीफ देने के लिए कमिटेड हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो फ्लड रिलीफ एफर्ट्स हैं उसके बारे में भी पूछा सिंध जो है चीफ मिनिस्टर से। उन्होंने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो फ्लड अफेक्टेड होम्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और उन्होंने थैंक यू प्राइम मिनिस्टर का किया कि वो आते हैं कराची और उनका हाल पूछते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जब एड्रेस कर रहे थे सेकंड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन थे, तो उन्होंने कहा जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, और हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को $7 बिलियन में आने वाले सालों में हिट करना चाहते हैं, तो ये हमारा टारगेट है। अच्छा जी, टॉल टारगेट है, लेकिन कर तो आप सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, इस्लामाबाद जो है फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज ज़हरा बलोच, उन्होंने आज बहुत ज्यादा माइंड किया है और बुरा मनाया है कि ये जो इजरायली मीडिया और इंडियन मीडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के जो खिलाफ है बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो इजरायली मीडिया में आया कि पाकिस्तान जो है शायद ईरान को आर्म्स दे सकता है, जिसके ऊपर बलोच साहिबा ने कहा कि ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है, हमारे और उनके बीच में दोस्ती जरूर है बट दैट डजंट मीन कि हम उनको देंगे। इजरायली मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है ईरान को शाहीन 3 मीडियम रेंज बुलिस्टिक मिसल्स देने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल झूठ है, हमारी है उनके साथ कोई ऐसी डील नहीं हुई है, और जो है ये आपका मेलिशियस एजेंडा है इसके पीछे और फेक न्यूज है, तो आप फेक न्यूज ना करें। इसके अलावा बलोच साहबा ने अपने भी लोगों को कहा कि पाकिस्तान में हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की किसी भी एफर्ट को जो है वो सपोर्ट ना करें, और हम भी वॉर को प्रिवेंट करने में शामिल हैं, हम वॉर को बढ़ावा देने में शामिल नहीं हैं, तो हम कैसे जो है किसी को अपने वेपन्स दे सकते हैं, और हमारी तो कोई डील्स ही इन प्लेस नहीं है, तो क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने जो इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा शोर आ रहा था कि शेख हसीना के निकालने में पाकिस्तान का ISI जो है उसका हाथ है, उन्होंने कहा कि बलोच साहब ने कि दिल्ली जो है इट हैज डिस्टर्ब्ड ऑब्सेशन विद इस्लामाबाद, और उसके जो लीडर्स हैं और मीडिया जो है उसकी हैबिट बन गई है कि पाकिस्तान को हर चीज के लिए वो ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं बांग्लादेश के साथ और हम उनको सपोर्ट करेंगे और सॉलिडैरिटी उनके साथ शो करेंगे, और हम दुआ करते हैं कि उनके मुल्क के अंदर नॉर्मलसी जो है फिर से वापस आए। तो आज ये दो एलिगेशन, एक इजरायली मीडिया और एक जो इंडियन मीडिया की तरफ से लगाया गया था, उसको इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर बड़ी जोरदार स्पीच की, और उन्होंने कहा जी कि ये जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उसकी वजह से एक डेड पार्टी जो है वो फिर से जिंदा हो गई है। भाईजान थोड़ी तबीयत ठीक है, डेड पार्टी डेड किधर है, उसके तो बंदे कॉन्स्टेंटली सड़कों पे निकले हुए हैं, उनके आपने सारे जो हैं वो सिंबल ले लिए, उनको दीवार के साथ लगाया, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा आपकी पार्टी से ज्यादा वोट लिए, PMLN से ज्यादा वोट लिए, तो भाईजान डेड कैसे है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सो के तो नहीं उठे, ऐसा हुआ कि आप सो के उठे और आप साथ ही आ गए पार्लियामेंट में, नहीं भैया ऐसे मत करो बीबी जरदारी, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, डोंट डू दिस। अच्छा जी, आज एड्रेस कर रहे थे नेशनल असेंबली में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है कि ये जो इसको सीटें से ले ली गई थी वो इसको दी जाए, जबकि कोर्ट का ये फैसला था कि जब उन्होंने इसका बैच सिंबल जो था वो ले लिया था उसकी वजह ये थी कि इस पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा रिगिंग थी और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो भी सही से नहीं करवा सके थे, और फिर उन्होंने जुडिशरी के ऊपर बड़े जो हैं वो ताने कसे, उन्होंने कहा जी कि जुडिशरी कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है, हमारी हिस्ट्री जो है वो शो करती है कि इनका अपना खुद का जो है क्या पास्ट है, और उन्होंने कहा जी कि इनका तो ये हाल है कि जो दो मॉर्टर्ड हमारे लीडर्स थे बीबीबी के ZA भुट्टो और बेनजीर, उनके लिए हम अभी तक लड़ रहे थे, और अभी जस्ट लास्ट ईयर जुडिशरी ने जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा कि हाँ जी ये बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल इसका मर्डर था, तो अब जाके इतने अरसे के बाद हमें मिला, तो अगर हमारा ये हाल है तो कॉमन मैन का आप सोच सकते हैं कि उसको क्या इनसे जस्टिस मिलती होगी। और बीबी जरदारी ने कहा जी कि ये जो कुछ कोर्ट इस वक्त डिसीजंस ले रहा है उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा बैड होंगे, और ये लास्ट मिनट पे जो ये इनको PTI को जो फायदे दिए जा रहे हैं और ये सीटें जो हैं ये कैंडीज की तरह उनको बांटे जा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोर्ट जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो किसी के नहीं ले सकता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन फैसले करती है, और इनको जो है कोई इस तरह की इजाजत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो और इन्होंने फिर उसके बाद मजाक उड़ाया जुडिशरी का, बीबी जरदारी ने, और उन्होंने कहा जी कि जो कोर्ट्स हैं हमें पता है बहुत केपेबल है, ना सिर्फ वो कोर्ट रूम्स रन कर सकती हैं बल्कि डैम्स भी बिल्ड कर सकती हैं। व्हाट इज दिस, ये तो बड़ी आपने खतरे में नायक बात की, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आएगा अभी तो, ये आपको समझ आइए किसको इन्होंने हिट किया है, साकिब निसार साहब को जी, जो आपको पता ही है बड़ा डैम बनाने में निकले थे, अपना तो कोई जुडिशरी का उन्होंने काम किया नहीं, कोई इसमें रिफॉर्म्स लाए नहीं, डैम बनाने के लिए निकल पड़े थे साकिब निसार साहब, फिर वो पैसा जो जमा किया किधर गया उसका कुछ पता नहीं चला। माय गॉड दीज पीपल। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन जो है उसने आज किया, क्योंकि राणा सईद जो थे उनको जो चेयरपर्सन थे वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, और जो है साथ ही जो ये नोटिफिकेशन जो भेजा था इसने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसको भी, क्योंकि अब बोर्ड जो है उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर किया गया था, उसको नोटिफिकेशन को भी उन्होंने सस्पेंड किया। आज ये एक हियरिंग सुन रहे थे ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इन मोरगलाज नेशनल पार्क, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये जो जनरल्स हैं इस मुल्क की और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये इस सिस्टम को बर्बाद किए हुए हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनको बिल्कुल अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था असल में कैबिनेट सेक्रेटरी कामरान अली अफसल को, और जो एजीपी हैं मंसूर उस्मान अवान, और जो ओनर है प्राइवेट मोनाल रेस्टोरेंट के लुकमान अली अफसल, उनको, क्योंकि इनके पास जो है एक पिटीशन डाली गई थी। कोर्ट को बताया गया कि राणा को जो रिमूव किया गया है वो एक कोर्ट ऑर्डर पे किया है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर ये बोर्ड है और उसकी शिकायत थी, उसकी वजह से इसको किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम लॉ एंड ऑर्डर है, उसने किस कैपेसिटी में जो है इसको अपने अंडर लिया है और क्या रिलेशनशिप है उसका ओनर के साथ, और जो है वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो जो है इस तरह की कैसे इशू कर सकते हैं, तो क्या कैबिनेट सेक्रेटरी जो उन्होंने उनको रिमूवल का हुक्म दिया था क्या उन्होंने अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर से लिया था, तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर से लिया था, लेकिन ये कैसे लिया था क्योंकि ये तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं, तो ये उन्होंने आज कहा है जनरलों को भी कहा कि ये भी खराब कर रहे हैं चीजों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने एक दफा फिर से नोटिस लिया है पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस डेफर हुए हैं उसके लिए, आज उन्होंने पंजाब चीफ सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया और उनसे पूछा कि पंजाब के अंदर कॉन्स्टेंटली जो गवर्नमेंट है वो लोकल इलेक्शन को क्यों डेफर करती चली जा रही है, और उन्होंने दोनों इनको कहा है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को कि अगस्त 20th को आके वो इनके सामने जवाब दें। पंजाब गवर्नमेंट जो थी हेडेड बाय मरियम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 जो है वो उसके अंडर हम जो है वो बनाया है जो कि वेट किया जा रहा है बाय लॉ डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रही है इसका ड्राफ्ट कैबिनेट को भेजने के लिए, तो जो कि पंजाब असेंबली में टेबल किया जाएगा। एज अ रिजल्ट हमको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमको 3 to 4 weeks जो है दें इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के लिए, तो आज ईसीपी ने कहा कि इनको 3 to 4 weeks जो दिए थे वो अब एक्सपायर हो गए हैं। इसके बावजूद इन्होंने ना तो ये जो प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स था ना तो इसके ऊपर कोई काम किया है ना इसका कोई ड्राफ्ट बनवाया है, क्योंकि ये उन्होंने रोक दिया था ये काम करने के लिए, तो ना उसके ऊपर हमें कोई डेवलपमेंट बताई है ना ही हमें ये बता रहे हैं कि ये डिले क्यों किया है इन्होंने लोकल बॉडी का इलेक्शन, तो इसलिए जो है ये टाइम वाइम सब एक्सपायर हो गया और 20th August को आके आप इसका आप जवाब दें। हिंदुस्तान में भी जनाब बहुत मरामरी और लड़ाई चल रही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां पे भी जो अब ऑपोजिशन है वो चुप करके बैठ नहीं रही है, बड़े अरसे के बाद उनको भी जरा पावर मिली है तो वो अब ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उसमें इनकी लड़ाई हो जाती है। बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अलेजली बड़े ही ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो हैं शुरू, यानी कि लड़ाई कैसे हुई, शुरू ऐसे हुई कि उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है मलिक अर्जुन खड़गे के लिए इस हाउस ऑफ एल्डर्स के अंदर, जिसके के अंदर बहुत ज्यादा केओस मचा। चीफ जो चेयरमैन थे जगदीप डांडेकर, उन्होंने बड़ी वार्निंग्स दी, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, तुम लोग डेमोक्रेसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, और खड़गे साहब ने असल में कहा था कि ये जो बीजेपी के घनश्याम तिवारी हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी ही भद्दी लैंग्वेज यूज की है और कांग्रेस ने फिर कहा था कि उनको सॉरी बोलना चाहिए बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। दांडेकर ने कहा कि नहीं, एक्चुअली तो उन्होंने आपकी तारीफ की है करजे साहब, तो संस्कृत में तो अपोलॉजी किस चीज का है। इसके ऊपर तो एसपी की जो जया बच्चन साहिबा हैं वो भड़क गई और उन्होंने कहा जी हमको लैंग्वेज भी समझ आता है और हमको बॉडी जो जेस्टर्स हैं और बॉडी लैंग्वेज भी और वैसे भी लैंग्वेज भी हमको सब कुछ समझ में आता है। आप तो उधर दूर बैठे हुए हो, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं और ये हमारे कॉलीग्स हैं, तो ये क्या क्या कुछ करते हैं और कह सकते हैं ये हमको सब मालूम है। अब दांडेकर साहब को जया बच्चन साहिबा के कॉमेंट्स अच्छे नहीं लगे और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं सारी चीजों को डिसरप्ट करने के लिए और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कंट्री। अब जब ये कहा तो ऑपोजिशन जो है उसने फिर वॉकआउट किया। दांडेकर साहब ने उनका जो वॉकआउट है उसको बड़ा स्लैम किया, यानी कि बैठे रहो तो मेरी बेस्ती सुनो। हैं जी उन्होंने क्यों बेस्ती सुनी थोड़ी ये बारह जी। तो उन्होंने फिर ओपन कर दिया फ्लोर दूसरे लीडर्स के लिए। लीडर ऑफ हाउस जो थे जेपी नड्डा साहब जो है उन्होंने भी फिर प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि ये जो सारे लोग कांग्रेस की अलायंस में जो है ये जो बाहर निकल के गए हैं एक रेजोल्यूशन लाएं और इनको कंडेम करें। फॉर्मर पीएम जो है एचडी देवा गावड़े उन्होंने भी बड़ा एक्यूज किया दो कांग्रेस के मेंबर्स को, उन्होंने कहा जी कि तुम जो है प्रोवोक कर रहे हो खर्जे को, खर्जे तो जो है वो रिकनसाइल कर चुका था इस इश्यू से लेकिन तुम लोग जो है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो जिसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। ऑपोजिशन ने फिर इन रिमार्क्स पे उनको बड़ा ज्यादा फिर से जो है वो स्लैम किया और उन्होंने कहा जी कि अब हम एक हाउस प्रोसीडिंग्स लेकर आएंगे और हम दांडेकर साहब को देंगे और मोदी गवर्नमेंट जो है वो अब सही से लोगों के साथ जो है वो यानी कि एमपीज के साथ नहीं कर रही है। इसके ऊपर जी फिर दांडेकर साहब ने फिर वो उन्होंने कहा जी मैं अपनी तो हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रखूंगा और ये गवर्नमेंट जो है 5 साल चलेगी, मैं देखता हूं तुम लोग क्या कर सकते हो। जेडीयू के जो संजय झा थे और आरएलपी के जो जयंत चौधरी साहब थे उन्होंने भी फिर जो है जया बच्चन साहिबा को बहुत ज्यादा कंडेम किया, उन्होंने कहा कि तुमने चेयरमैन का इंसल्ट किया है। जयंत बच्चन ने इस मौके पर चेयरमैन दांडेकर को कहा कि तुम्हारा टोन और इन सब लोगों का टोन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब फिर दांडेकर साहब इस पे भड़क गए, उन्होंने कहा जया जी आप जो है आपका बहुत बड़ा रेप्यूटेशन होएगा लेकिन आपका कैसा रेप्यूटेशन है वो तो सारों को ही पता है, क्योंकि आपको पता ही है ना जया जी के पास जब वो तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर्स आते हैं तो वो काफी डांट वांट उनको देती है, तो उसी का जिक्र कर रहे थे कि आपका रेप्यूटेशन कैसा है हमको पता ही है, तो आप मेरी बात कर रहे हो कि मेरा टोन कैसा है, आपका खुद का टोन जो है लोगों के साथ कैसा होता है वो आप देखा। आप सेलिब्रिटी होगी बहुत बड़ी लेकिन यहां पे आपको हाउस के अंदर डेकोरम फॉलो करना पड़ेगा। अब जी इस पे तो फिर जो है ऑपोजिशन फिर भड़क गई, फिर सोनिया गांधी ने कहा जी अब हम नहीं बैठेंगे, निकल गए और अब ये एक नोटिस जो है जो कि चेयरमैन को भेजेंगे उसके ऊपर तकरीबन कह रहे हैं ऑपोजिशन के 80 एमपीज जो हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन किया है। ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने इशू किया है जी एक नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि एक स्कूल जो है इंदौर में उसमें कुछ लड़कों ने अलेजली कुछ बच्चों को अलेजली स्ट्रिप किया गया टू सर्च फॉर अ मोबाइल फोन बाय अ टीचर और उन बच्चियों ने जो है जाहिर है कि इसके लिए बड़ा शर्म फील की और उन्होंने जाके सोशल एक्टिविस्ट जो हैं चिन्मॉय मिश्रा उनको जाके शिकायत लगाई, जिन्होंने फिर जो है पुलिस को बताया, वो पुलिस से बात जो है हाईकोर्ट में पहुंची और हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि इमीडिएटली उस टीचर का फाइंड आउट करें और देखें कि इनको क्यों स्ट्रिप सर्च किया गया था न इन बच्चियों को। इसके साथ साथ एक सेमी न्यूड बॉडी जो है एक ऑन ड्यूटी फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो है उसकी एक कोलकाता के हॉस्पिटल में मिली है, सेकेंड ईयर की ये स्टूडेंट थी ऑफ चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ आरजी कल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और ये ड्यूटी के ऊपर थी और इनके जिस्म के ऊपर काफी इंजरी के मार्क्स भी थे। इनके जूनियर्स कहते हैं जी कि इनके साथ हमने डिनर किया और उसके बाद फिर ये सेमिनार रूम में चली गई क्योंकि कोई ऐसा अलहदा से कमरा है नहीं जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। सुबह जब हम सब लोग आए तो इसकी बॉडी यहां पर मिली, तो ये मैटर जो है इसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। सीनियर मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने अलबत्ता मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है डॉक्टर मानस गुमते कि इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है जिसमें लगता है कि कोई हाई अप शायद इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये जनाब बड़े ही सीरीज की बात है। और जनाब जॉन इब्राहिम साहब ने अपना एक नया इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये जो एक्ट्रेस पान मसाला के एड्स करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़े हार्मफुल इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। वो कहते हैं जी मैं अपनी जिंदगी ऑनेस्टी के साथ गुजारता हूं और मैं जो प्रैक्टिस करता हूं मैं वही प्रीच करूंगा, तो मैं अगर रोल मॉडल बनना चाहता हूं तो मुझे इन हार्मफुल चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये मैं अपना फेक वर्जन आपके सामने नहीं लेके आ सकता कि वैसे तो मैं अपने हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस हूं, पान मसाला खाता नहीं हूं, लेकिन मैं उसका ऐड कर लूं तो ये ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, फिर उनको समझ आया कि उनके तो बड़े दोस्तों ने ये पान मसाले के ऐड किए। उन्होंने कहा जी मैं अपने जो एक्टर फ्रेंड्स हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनको मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा हूं, मैं स्ट्रिक्टली अपनी बात कर रहा हूं। आई कैन नॉट सेल डेथ। और ये जो आपको पता है कि ये पान मसाला की इंडस्ट्री कितने की है, पान मसाला की इंडस्ट्री सिर्फ इन हिंदुस्तान अलोन 45,000 करोड़ रुपीज की है। पान मसाला जो बेचता है वो भी यानी कि करोड़पति से अरबपति है बल्कि हिंदुस्तान में। तो कहते हैं जी 45,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि शायद इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही होगी और इसको इलीगल जो है वो नहीं समझ रही है। आपको पता ही है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो सितारे हैं जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, उन्होंने ये पान मसाले के एड्स में काम किया था, लेकिन इनमें से जो अक्षय कुमार था फिर उसने सॉरी करके जब बहुत बैकलैश आया तो वो बाहर निकल आया था और उसने कहा था जी अब मैं कभी भी इस तरह का एड नहीं करूंगा। तो ये है आज जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है जनाब, उसके अंदर किरण राव की जो डिक्टेटोरियल डेब्यू थी लपाटा लेडीज, वो आज दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट में। ये दिस इज द स्टोरी ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और इसकी डायरेक्टर जो थी किरण थी और इसके प्रोड्यूसर जो थे वो आमिर खान साहब थे, तो आमिर खान साहब भी वहां पे मौजूद थे और इन दोनों ने ही वहां पे जो ऑडियंस की उनके साथ मिले, बातचीत की। ये जो फिल्म थी ये दिखाई गई थी जजेस को और उनकी फैमिलीज को और ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्री जो है इन ऑडिटोरियम ऑफ सी ब्लॉक एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, और इसका मकसद यही था कि पता चल सके कि जो औरतें हैं उनके साथ जो है क्या व्यवहार किया जाता है और क्या वो उनको मुश्किलें होती हैं। ये जो की जा रही है सारी एक्टिविटीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्गेनाइज की जा रही है टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए जो है जनाब आज ये दोनों सितारे थे। और जनाब आ गया है नया गाना वरुण धवन और श्रद्धा कपूर का, वंस अगेन दे हैव यूनाइटेड इन मैड ऑफ सुपर नेचुरल यूनिवर्स। ये जो स्त्री 2 आ रही है उसके अंदर जो श्रद्धा है उसने कैमियो किया था थुमकेश्वरी भेड़िया के अंदर, तो इस दफा जो वरुण है उसने अपना स्पेशल जो है अपीयरेंस किया इस रोमांटिक सॉन्ग खूबसूरत के अंदर। इसमें हां राजकुमार राव और अभिषेक बैनर्जी भी हैं, लेकिन बेसिकली ये जो लव स्टोरी है ये यानी इस गाने के अंदर फिर रही है अराउंड वरुण धवन एंड श्रद्धा। जो सॉन्ग है वो स्टार्ट होता है प्रेजेंटिंग यू अनहर्ड टेल फ्रॉम चंद्री, और वरुण और अभिषेक जो है देखे जा रहे हैं कि वो एक फॉरेस्ट से निकले हैं और पीछे जो है एक ओल्ड मेंशन है। श्रद्धा जो है उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और वो वरुण से मिलती है और वरुण उससे रोमांस कर रहा है, और लोग जो है उनको आज इनके बीच में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा पयान होर कम करो। ठीक है जी, इजिप्शियन ओलंपियन मोहम्मद अल सैयद, बहुत बड़ा स्टार है ये इजिप्ट का, इसको आज फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट किया है आउटसाइड अ पेरिस कैफे फॉर सस्पेक्टेड सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि ये जब कैफे में बैठा था तो वहां पे कस्टमर को इसने ग्रोप करने की कोशिश की थी। जो इंसिडेंट है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने नाम नहीं लिया था, लेकिन जो इजिप्शियन डेलीगेशन वहां पे गया उसने ये जो है वो कंफर्म किया इसका नाम। इजिप्शियन ओलंपिक कमेटी जो है उसने कहा जी कि बिल्कुल इसके खिलाफ जो है एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर लिया गया और इसको गिल्टी फाइंड आउट किया गया तो फिर सारी लाइफ के लिए इसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, और ये कभी भी जो है वो रेसलिंग चैंपियन है ये, तो ये रेसलिंग नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा जी कि इसके बहुत सारे जो है डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, इसको एक इवेंट के लिए बुलाया गया था और ये उस इवेंट में भी नहीं आया था और इसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। इसने 2020 में समर ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इसके अलावा बहुत सारे इसने गोल्ड मेडल्स जीते हैं एट अफ्रीकन रेसलिंग चैंपियनशिप्स। तो बड़ा स्टार प्लेयर है, मगर फिर स्टार्स कभी कभी कुछ संभाल नहीं सकते हैं खुद को, तो फिर ऐसे ही हुआ। श्रीलंका जो है वो अब जा रहा है इंग्लैंड में खेलने के लिए क्रिकेट, तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब के जो बोर्ड है उसके ऊपर इसने आज एक कहा है कि हमारा सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा कंसर्न है आपके कंट्री के अंदर, ये जो एंटी इमिग्रेशन राइट्स चल रहे हैं उसके लिए, और उन्होंने कहा जी कि हमको आप सिक्योरिटी कवर दें। श्रीलंकन प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर 3 मैच टेस्ट सीरीज, और उन्होंने अपने इन बोर्ड से कहा है कि भई आप एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स यहां पे करें और सिक्योरिटी प्लान्स बनाएं, क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्लान्स नहीं है अपने स्क्वाड को करने के लिए, देखभाल करने के लिए। ये जो स्क्वाड है ये अब इंग्लैंड के जो खेलेंगे मैचेस खेलेंगे उसमें मीडिया ने आज कुछ प्लेयर्स के साथ बात की और उन्होंने कहा जी आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। उन्होंने कहा जी ट्रेनिंग हमारी कैसी चलेगी कि हम तो सारा वक्त वी आर कन्फाइंड टू द होटल, हम बाहर डिनर के लिए नहीं जा सकते, कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई घूम फिर सिटी में नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ट्रबल नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें भी पकड़ के मारा पीटा जाए, तो इसलिए हम तो होटल के अंदर ही रहते हैं और सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं। श्रीलंकन टीम के जो मैनेजर हैं महेंद्रा हालांगोडे, उन्होंने भी ये जो सारा इशू है ये रेस किया है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ और उन्होंने कहा जी के प्लीज पायन देखो देखो जितना बच सकते हो बचो है जी, हम तो आपको यही कहेंगे। इसके अलावा जी श्रीलंकन जो स्पिनर है प्रवीण जया विक्रमा, 25 इयर्स टोटल इनकी एज है, लेकिन इनको चार्ज किया गया है फॉर 3 काउंट्स ऑफ एंटी करप्शन कोर्ट ब्रीचेस फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट अप्रोच टू फिक्स मैचेस, यानी कि इनके पास कोई मैच फिक्सिंग के लिए आया था लेकिन इसने जो है रिपोर्ट नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा की। आईसीसी ने यह कहा, आईसीसी ने कहा कि इसके बाद कुछ लोग आए थे टू फिक्स इंटरनेशनल मैचेस और उसने उन्होंने इसको कहा था कि एक दूसरे लड़के को भी अपने साथ जो है शामिल करो इन 2021 सीजन ऑफ लंका प्रीमियर लीग। तो फिर हमें पता चला कि वो लोग जो थे वो जब गए तो इनकी जो ईमेल के ऊपर भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी इसने डिलीट की और इसने हमें रिपोर्ट नहीं किया, जबकि प्लेयर्स के पास ऐसा कुछ भी होता है तो उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। अब इसके पास 14 डेज है टू रिस्पॉन्ड टू द चार्जेस और ये जो है प्रवीण, इसने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था अप्रैल 2021 में, बहुत ही यंग लड़का है और इसने 11 विकेट्स ली थी इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, तो बड़ा ही प्रॉमिसिंग यंग मैन है, लेकिन ये अब श्रीलंका के लिए नहीं खेला है सिंस जून 2022। तो ये जो है जनाब बड़े ही अफसोस के बातें हैं, ऐसा चक्कर है। और जनाब अब हम शुरू करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट, तो हम आपको बता दें कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान भाई, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं। आपको पता ही है हम हमेशा आपको बताते हैं कि मार्केट से कम प्राइस पे अगर आपको अपने अप्लायंसेस लेने हैं तो आप सुल्तान भाई के पास जाएं। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव ईस्ट के ऊपर है और वो आपको जो जैसे मैं कहती हूं शैम्पेन कलर के आपको चाहिए या कि अगर आपको जो आर्फाबाजी कहते हैं एमरल्ड ग्रीन कलर के अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं इनके पास, सॉरी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, ईस्ट नहीं वेस्ट, वेस्ट में है और इनका नंबर है 9054502828 इनका नंबर है, ठीक है जी। अच्छा जी आज की तो ऑब्वियस ही है, बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारी स्पेशल रिपोर्ट किस पे होगी, नन अदर देन अरशद नदीम। अरशद नदीम की आज हम सारी हिस्ट्री ट्रेल करेंगे, ये कौन है, कहां से हैं, कैसे इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग शुरू की और किस तरह से जो है फिर ये इस लेवल तक पहुंचे, तो ये जनाब आ जाए। आपको पता ही है कि जिस वक्त कल हम भी यहां पे बैठे हुए थे तो अचानक से हमें न्यूज पता चली कि अरशद नदीम हैज एक्चुअली वन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो, तो जब ये खबर मिली तो जो इनका विलेज है उसमें तो जी नाच और गाना और वो जो है वो ढोल बजने शुरू हो गए और जिस वक्त यही न्यूज मिली थी इनके विलेज के अंदर कि जी ये ओलंपिक फाइनल्स में पहुंच गए हैं उसी वक्त से ये जो है वहां पे ढोल बजने शुरू हो गए थे, लोगों ने नाचना शुरू कर दिया था। अरशद नदीम जो है वो एक मियां चुन्नू जो है पंजाब में उसके पास एक छोटा सा फार्मिंग विलेज है उसके रहने वाले हैं, 27 ईयर्स इनकी एज है और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता जिस वक्त वहां पे पेरिस में, तो हजारों मील बैठे हुए लोग इनके विलेज में मियां चुन्नू के पास उन्होंने खुशी का इजहार किया, जैसे कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज ने भी दुनिया सारी के अंदर जो है खुशियां मनाई। इनके जो बड़े भाई हैं मोहम्मद अजीम साहब, 35 इयर्स उनकी भी एज है, तो उन्होंने भी इनकी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा इन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है और ये बड़े जबरदस्त इन्होंने थ्रो किए। ये जो भी आप टीवी पे देख रहे हैं तस्वीर ये इनके वालिद साहब की है, ये अरशद के वालिद हैं, वालिद साहब के पास भी आज मीडिया पहुंचा हुआ था और उनसे बात कर रहा था तो वो भी इसके ऊपर जो है बात कर रहे थे अपने बेटे के लिए और कह रहे थे मैंने बड़ा प्राउड फील किया। अच्छा मैं बता रही थी आपको इनके भाई मोहम्मद अजीम का, मोहम्मद अजीम ने कहा जी कि हम बड़ी इसने हिस्ट्री क्रिएट की है, पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, इसने वो कर दिखाया जो कि हम इससे चाहते थे कि ये करे, लेकिन बेचारे मर्द तो नाच रहे थे, औरतें जो हैं वो एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर बैठी हुई थी नदीम के घर के अंदर और जो है वो ये सारा देख रही थी। अच्छा, इनकी जो मदर हैं रजिया परवीन साहिबा, रजिया परवीन साहिबा से भी आज मीडिया ने बात की और उनसे भी पूछा कि भाई आप क्या कहती हैं अपने बेटे के बारे में। वो कहती हैं जी मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्राउड फील करती हूं कि मेरे बेटे ने जो है, ये देखें जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो इनकी वालदा को देख रहे हैं, लोग उनको मिठाई खिला रहे हैं। ये रजिया बेगम इनका नाम, परवीन इनका नाम है। रजिया परवीन साहिबा ने कहा जी ये मेरे से वादा करके गया था कि ये जो है मेडल जीत के लाएगा और इसने मुझे कहा था कि मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं बाहर जाके बहुत अच्छा खेलूंगा और पाकिस्तान को प्राउड करूंगा। तो उसके ऊपर इनकी वालदा ने आज जो है ये सारी टिप्पणियां दी। इसके अलावा जी वो कहते हैं जो इनके इलाके के लोग हैं कि इनकी जो प्रैक्टिस थी इंतहाई थर्ड क्लास और लो ग्रेड जो पुअर जो इक्विपमेंट होता है उसके साथ होती थी। इनका एक्सेस चूंकि ये एक विलेज में रहते हैं तो जिम तक भी जा नहीं सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा ये जो एथलेटिक जो एथलेटिक्स हैं उसके लिए कोई प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स नहीं है जो कि इनके इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के पास थे। तो ये जो है एक क्रिकेट फील्ड के अंदर जाके जो है वो करते थे। इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहला गोल्ड मेडल आया है, ओलंपिक मेडल, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ओलंपिक मेडल आया है आफ्टर 32 ईयर्स एंड फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड आया है आफ्टर 40 ईयर्स। रशीद अहमद साकी जो कि इनके फॉर्मर कोच थे जिन्होंने कि इसको स्पॉट किया था इसके टैलेंट को, उसने इसको कहा था कि भई तुम जो है ये ट्रेनिंग अपनी करो और पाकिस्तान का झंडा तुम बुलंद कर सकते हो और तुम जो है इस तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो दो। नदीम जो है वो एक रिटायर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो इनके वालिद साहब हैं उनके बेटे हैं। ही इज थर्ड ऑफ 7 सिबलिंग्स, 7 ये बहन भाई हैं उसमें से तीसरा नंबर इनका है। और पहले शुरू में तो ये क्रिकेट की तरफ बड़े इनका जो था वो ध्यान था, लेकिन फिर इनके जो बड़े ब्रदर हैं शायद उन्होंने इसको कहा कि नहीं नहीं तुम क्रिकेट छोड़ के जैवलिन थ्रो करो। जैवलिन का उस जमाने में वो कहते हैं जी हमारे विलेज में बल्कि पाकिस्तान पूरे में ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये क्या करते थे, ये छड़ियां लेके भारी भारी छड़ियां लेके जो है वो फेंकते थे दूर, स्टिक्स लेके बड़ी बड़ी दूर दूर तक फेंकने की कोशिश करते थे एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड। लोकल स्पोर्ट्स ऑफिशियल जो है परवेज अहमद डोगर, उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा जी कि इस लड़के ने बेतहाशा जो है डिफिकल्टीज फेस की क्योंकि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसको नहीं दी जाती थी। एक वुडन स्टिक को एक रोप के साथ बांध के जैवलिन की तरह हम फेंकते थे जो कि बहुत दूर जाके गिरती भी नहीं थी, लेकिन ये प्रैक्टिस करता ही चला जाता था क्योंकि पाकिस्तान के, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ट्रैक एंड फील्ड के जो एथलीट्स हैं उनके लिए कोई डेडिकेटेड जो है वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है। मार्च में नदीम ने जो है वो कहा था और ये बात हमारी तक भी आई थी, सो वी आर विटनेस टू दिस, इसने पाकिस्तान में कहा था कि इसके पास सिर्फ एक जैवलिन है और जो पिछले 7 साल से यूज कर रहा है वो डैमेज हो गया है और इसके पास जैवलिन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। और आप देखें जिस वक्त ये नंबर वन बन के खड़ा था वहां पे तो क्या फीलिंग हो रही होगी उन स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स की पाकिस्तान में जो कि इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि 770 तक हमारे साथ बात पहुंची थी और आरफाबाजी ने हम सबको कहा था कि भाई पैसे जमा करो हम इसको पैसे लेके भेजेंगे। और आप सोचें जरा 1500 टोटल 1200 से 1500 कनेडियन डॉलर का एक जैवलिन है, तो वो भी ये बेचारा जो है, जाहिर है कि ये तो गरीब बच्चा था लेकिन स्पोर्ट्स वाले इसको खरीद के, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इसको खरीद को देने को तैयार नहीं थी, बहरहाल उधर कहीं पर एक बंदा था उसने इसको खरीद के दिया था। तो वो जनाब वो डैमेज इसके था उसी से ये ट्रेनिंग जो है वो करता रहा। और उसके बाद वो कहते हैं जी जब मीडिया ने आज इनसे बात की नदीम साहब से, तो उन्होंने कहा जी उधर ही वहां पे पेरिस में जब नदीम साहब से आज बात की मीडिया ने, उन्होंने कहा जी कि जब मैंने ये जैवलिन अपने हाथ में पकड़ा और जब ये मेरे हाथ से निकल के गया जिस ताकत से ये गया तो मुझे समझ आ गई थी कि शायद मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। और वाकई इन्होंने बनाया, इन्होंने प्रीवियस ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 मीटर्स का जो कि सेट किया था डच जो लड़का था एंड्रियास थॉरकिल्सन ने बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में, उसको इसने तोड़ा। इनके जो इस वक्त के जो कोच हैं सलमान बट, वो कहते हैं जी कि मुझे पता तो था कि इसने बड़ी ताकत से जो है वो फेंका है थ्रो, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब हमें पता चला कि इसने जो है 92.97 पे फेंक के एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट की है। ही हैज बिल्कुल एक जो है सिलेबस की तरह, एक टेक्स्ट बुक जो परफेक्शन थी उससे इसने किया। ही हैज वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी और ये हमारा जो है हीरो जो है वो बन गया है। 92 से कुछ और भी याद आया? 92 से और कुछ याद आया? क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हमने जीता था ना 92 बड़ा करामत वाला नंबर है भाई ऐसे। अच्छा जनाब, तो आज क्या हुआ है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने 100 मिलियन रुपीज का अवार्ड जो है इसके लिए अनाउंस किया है। कमाल है, वाह जी वाह। पंजाब के जो गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर खान, उन्होंने भी कैश रिवॉर्ड ऑफ 2 मिलियन रुपीज जो है वो अनाउंस किया है। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने 50 मिलियन रुपीज का अवार्ड सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए अनाउंस किया है। स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो कह रहे हैं कि यानी वहाब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब के हम एक कराची के अंदर एकेडमी इसके नाम से जो है वो भी खोलेंगे। सिंध गवर्नमेंट के जो हैं कामरान तिसौरी गवर्नर जो हैं सिंध के, उन्होंने भी कहा कि 1 मिलियन रुपीज हम देंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट जरदारी इमरान खान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इनको बहुत ज्यादा मुबारकें दी हैं। और आज बड़ा ट्रोल भी किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि एक इन्होंने चेक बहुत पहले बहुत अरसा पहले इसको दिया था, लेकिन जब आज उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज दिए तो फिर आज भी वो चेक लेके खड़े हुए थे, तो लोगों ने आज उनको काफी ट्रोल किया। अच्छा जनाब, वसीम अकरम ने इनको कहा जी कि तुमने जो ये बहुत ज्यादा ड्राउट आ गया था, पाकिस्तान के पास कोई भी मेडल नहीं आ रहे थे, तुमने उसको तोड़ा है, तुमने पाकिस्तानियों को प्राउड बनाया है। शोएब अख्तर ने कहा कि तमाम का तमाम पाकिस्तान के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वही चेंज हो गया थैंक्स टू दिस वन गोल्ड मेडल, और तुमने अपने हार्डवर्क से ये साबित कर दिया है कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बाबर आजम ने कहा कि ये इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। वहाब रियाज ने कहा कि ये इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मोमेंट है और आइकॉनिक डे है, एंड व्हाट एन एथलीट यू आर, और तुमने अपना नाम जो है हिस्ट्री में लिखाया। सकलेन मुश्ताक ने कहा कि जबरदस्त तुम्हारी जो है ये जो अचीवमेंट है इसने हमको बहुत प्राउड और पूरी नेशन को जॉय में मतलब बहुत हैप्पीनेस में बहुत खुशी में जो है वो डाला है। तुम्हारी ये कामयाबी जो है हमेशा जनरेशन तक याद रखी जाएगी। अहमद शहजाद ने कहा कि ये तुम्हारी जो विन है ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन ग्लोरी है। इसके अलावा बहुत सारे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने भी अरशद साहब को बहुत ज्यादा मुबारकें दी हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की छोटी सी स्पेशल रिपोर्ट, तो वी होप कि आपको पसंद आई होगी, तो आप जरूर कमेंट करें उसके ऊपर और हमें बताएं आपको कैसा लगा।
बिल्कुल जनाब, और ये थी गर्मा गर्म रिपोर्ट अरशद नदीम साहब के ऊपर, और जैसा कि शाजी जी ने बताया 92 बिल्कुल सही कह रही हैं शाजी, ओडीआई वर्ल्ड कप 92
हाँ।
आज कितने सालों हो गए, मैं तो कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो गया।
एग्जैक्टली
अब मुझे ऐसा लगता है कि
गिनती भूल गई है,
गिनती खत्म हो गई है, अब हम नहीं जीत पा रहे हैं। और जहर वैसे तो ये कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए
हाँ।
लेकिन ये ऑलमोस्ट 93 यानी 92.97 इज ऑलमोस्ट 93 इस टूटेगा तो सही, जहर रिकॉर्ड बना है, इससे पहले भी 90.57 का रिकॉर्ड आपने अभी बताया, लेकिन टाइम लगेगा मुझे ऐसा लगता है
टाइम लगेगा क्योंकि आप उसकी फिजीक देखें, उसका कद देखें, उस लड़के का ना
बहुत ही जानदार,
इसके लिए बहुत जानदार, वही जो तुमने सही वर्ड यूज किया कि जानदार बंदा जो है ना इसके लिए, क्योंकि वो देखे ना आप देखें कि उसमें टेक्निक क्या है कि एक वो डंडा सा ही है ना, डंडा सा आपने पकड़ के,
लेकिन जान की अफकोर्स जरूरत है, लेकिन मैं अभी कल भी रात में पढ़ रहा
हूँ टेक्निक,
इसमें टेक्निक्स का बहुत असर है।
हाँ हाँ, कि क्या उसकी
फ्लाइट एंगल है ना, एंगल अभी भी कहा जा रहा है कि ये इसने अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि जाहिर है इसको अंदाजा हो गया था जब इसने सेकंड की 92.97 तो इसने भी जोर देने की कोशिश भी नहीं की
हाँ।
लेकिन कहा ही जा रहा है कि अगर ये जरा सा एंगल अपना चेंज करके जिस पावर से ये फेंक रहा था, क्योंकि मैं सारे मीडिया देख रहा था वो कह रहे थे कि भाई नीरज चोपड़ा साहब जो है वो कंसिस्टेंट रहे हमें, अब उनका देखें वो 89.90 के करीब करीब रहे, लेकिन इसको कल कहा जा रहा था कि आउट ऑफ द सिलेबस निकला होता है ना समझा, आप एक चीज
टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन
ऐसा कि वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़।
नीरज का असल में प्रॉब्लम ये है कि नीरज का बहुत छोटा है लेकिन शॉर्ट है वो, हाँ ठीक है वो बहुत कंसिस्टेंट है,
शायद उसकी
ट्रेनिंग है बहुत
ज्यादा
ट्रेनिंग है, ज्यादा तो जेवलन है उसके पास।
और मजे की बात ये रही है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई भी यूरोपियन इस जेवलिन थ्रो में किसी भी मेडल की पोजीशन पे नहीं है
आया। हाँ, ग्रेनेडा का था तीसरा जिसने
वेस्ट इंडीज हो गए, दो हमारे जो हैं वो एशिया से हो गए।
तो इसको जो है ना इसको इसकी हाइट का और इसकी जो इसकी फिजिक है उसका जो है
बिल्कुल एडवांटेज मिला
है इसको,
लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू अरशद नदीम साहब जिन्होंने जो कर दिया है, अब वो आने वाले
हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, वो
नस्लें इसको कब कैसे भूलेंगी, नहीं भूल सकेंगी। जैसे कहते हैं ना आप कह रही थी कि 92 का वर्ल्ड कप हम नहीं भूलते,
एग्जैक्टली
मुझे लगता है कि ये थ्रो भी 92 के वर्ल्ड कप की तरह 92.97 1997 सदियों चलेगी।
अच्छा मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैं जिस वक्त खबरें कर रही थी तो जनाब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपका हम कंपटीशन में कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब कॉल कर सकते हैं।
जी
अब नहीं करेंगे, अब आप हमें मंडे को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आमिर ने भी बताया कि वो सारे यहां पे आए हुए थे, वो जो नासिर शाह साहब के आर्टिस्ट जो हैं, तो खबरें जो हैं वो 6 बजे शुरू ही नहीं हो सकी हैं, 7 बजे हुई हैं। एज अ रिजल्ट वी डोंट हैव टाइम टुडे। तो हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि ये जो हमारा 5359 टिम्बर्डी बुलेवार्ड है मिसेस सागा में, इससे डिस्टेंस कितना है अफ्रीकन लायन सफारी का, और हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी पैदल चल के जाएंगे तब कितना है, गाड़ी से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, या अपनी मोटर कार में जाएंगे तो कितना,
या नहीं जाएंगे
है? या जाएंगे मर्जी है ना भाई, जंगल के बादशाह ना सारे,
तैयार रहना है।
हाँ तैयार
रहना, सवाल हो सकता है,
कुछ भी सवाल किया जा सकता है कि जो है वो डिस्टेंस
और 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 और, हाँ। और क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस की बात हो रही है, हाँ। तो आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकता है,
हाँ,
सम टाइम वो तो पूरी बुक रट के आ जाते हैं, अब क्या होगा, टीचर है, टीचर की मर्जी, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ ले,
जंगल का शेर है, अंडा दे बच्चा दे, मर्जी है उसकी। तो आमिर को भी आप जंगल का बादशाह समझे हैं जी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन बेसिकली ये हम आपसे पूछेंगे। तो अब आप हमें मंडे को कॉल करें इंशाल्लाह, अगर मैं जिम्मेदारी
नहीं, अभी तो टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ ही लम्हे और हैं हमारे और आपके दरमियान, आपने ऐसे जुड़े रहना है। हमारा नंबर 4166201778 और सुनने के लिए हमारा नंबर 6478724900। टेक टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता।